अभी जो हमने गीत सुना वो केवल एक चिल्ड्रन सॉन्ग नहीं है या कोई डांस वाला गीत नहीं है, लेकिन सचमुच जो सभी बीमारियों की जड़ है, सभी विकारों का फाउंडेशन है, जो आज का टॉपिक है, देह अभिमान की मगरूरी। तो ये देह अभिमान रूपी कांटा और इससे मिलने वाले दुख दर्द, उससे बचने का एक सरल उपाय इस गीत में है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। बच्चा बन गए और सभी बातों से बच गए, जैसे बच्चा होता ही है इनोसेंट, वो सभी बातों से क्या होता है, न्यारा होता है, और सभी का क्या होता है, प्यारा होता है। इसीलिए उसको सेंट भी कहा जाता है, संत कहा जाता है। बच्चे क्या होते हैं, सच्चे होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, नटखट होते हैं, और उनके चित पर कोई बात रहती नहीं है। अभी कुछ हुआ और अबोध होते हैं, छल कपट नहीं होता है उनमें, कोई अपमान की फीलिंग नहीं होती है, हाँ, जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये सब बातें धीरे धीरे आने लगती है, लेकिन हमें वही छोटा वाला बच्चा रहना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी स्टोरी से, आपने शायद सुनी भी होंगी। एक जंगल में एक पत्थर, और उस पत्थर के बाजू में एक सुगंधी पुष्पों का एक क्या होता है, पौधा होता है। तो ऐसे ही दोपहर का समय होता है और फूल उस पत्थर से बात करता है कि देखो तुम्हारा क्या यूज है, क्या उपयोग है, लोग तो बस आते हैं तुम्हारे ऊपर बैठते हैं लेकिन देखते तो मुझे ही है, पिकनिक करते हैं और तुम्हारे ऊपर कचरा कूड़ा डाल के चले जाते हैं, लेकिन देखो लोग मुझे देखते हैं, मेरी महिमा करते हैं, मेरे साथ फोटो खींचते हैं, मेरी खुशबू लेते हैं, मेरी महिमा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस फूल के अंदर देह का अभिमान होता है, अहंकार होता है। तो पत्थर तो बेचारा मायूस होके उदास होके बैठ जाता है, बैठा हुआ होता है, और उस फूल के अंदर क्या होती है, एक मगरूरी होती है जो अपने व्यवहार से वो प्रकट कर रहा होता है उस पत्थर के सामने। कुछ समय के बाद वहां से रास्ते चलते क्या होता है, एक मूर्तिकार आ जाता है और उस पत्थर को देख के मन ही मन खुश होता है और अपना छनी हथौड़ा निकाल के अपना कार्य शुरू कर देता है। अब पत्थर को तो वेदनाएं सहन नहीं होती, वो बोलता है भाई तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा थोड़ा सहन करो, मैं जरूर कुछ विशेष आपको बना रहा हूं। और देखते ही देखते वो मूर्तिकार क्या कर देता है, एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर देता है। तो नजदीक ही एक मंदिर बन रहा होता है तो उस कारागिर की कलाकारी पर सब फिदा हो जाते हैं कि कितनी सुंदर इसने क्या की, एक मूर्ति बनाई है। तो उस पर सब मोहित होते हैं और मुंह मांगा दाम उस मूर्तिकार को मिल जाता है और उस मूर्ति की क्या हो जाती है, मंदिर में स्थापना हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है, मंत्र हवन भी किए जाते हैं। अब उस मंदिर में लोग भी आने लगते हैं और पुजारी क्या करता है, जहां से वो पत्थर निकाला गया था वहीं के फूल बड़े खुशबूदार है, तो वो फूलों को लेके उस मंदिर में पहुंच जाता है। अब उस फूलों को क्या किया जाता है, भगवान के उस मूर्ति के चरणों में रखा जाता है। अब क्या होता है, फूल को अपनी सच्ची क्या कहेंगे, औकात, या अपनी जो है ना अभिमान के कारण उस टूट जाता है उसका, और फिर वो उस पत्थर को क्या बोलता है, सॉरी बोलता है कि देखो मैं तो आज आपके चरणों में हूं, कल तो डस्टबिन में चला जाऊंगा, मुरझा जाऊंगा, लेकिन आपको तो क्या मिला, सदा काल का। हाँ, तो पूजनीय बन गए, तो रिस्पेक्ट मिल गया। तो देखो थोड़ा अपमान के घूंट हम पी लेंगे, थोड़ी सहनशीलता अपना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सदा के लिए हम पूजनीय और क्या बन जाएंगे, गायन योग्य बन जाएंगे। और फूल तो क्या, कितना लाइफ होता है उसका, हाँ वो तो थोड़ी देर के बाद मुरझा जाएगा और अगली जब पूजा होगी तब अगले नए फूल आ जाएंगे वहां, फिर पुराने फूलों को हटाया जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह अभी जो हमने गीत भी सुना, अभिमान कि स्वमान में मैं रहता हूं, अगर स्वमान में रहते हैं तो अभिमान वहां पर नहीं होगा। हाँ, तो अभिमान, अभिमान क्या होता है, दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो कहा जाता है कि स्वाभिमान होना चाहिए, हमें स्वाभिमानी होना चाहिए, किसी के आगे झुकना नहीं है, है ना। किसी को स्वाभिमान, उस बात को वो कहते हैं कि हमें किसी के आगे झुकना नहीं है, स्वाभिमानी बन के रहना है, ये हमारे खून में नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का, फिर हम फलाने देश के हैं, हम फलाने कुल में जन्म हमने लिया है, ये हमारे रक्त में नहीं है, ऐसे ऐसे बोल उनके होते हैं। ये है देह अभिमान की भाषा, और उसको वो क्या कहते हैं, स्वाभिमान। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया हुआ है, स्वमान। स्वाभिमान को बाबा ने स्वमान में परिवर्तित कर दिया। और कौन सा स्वमान दिया बाबा ने हमें, कि जो हम उस अभिमान के अग्नि से जलने से बचते हैं, हाँ, मैं एक आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, और क्या हो गया हूं, इन दुनियावी दुखों से दर्दों से बच गया हूं। तो ये सबसे बड़ा स्वमान है, क्या, कि मैं बच्चा हूं। तो ये गीत जो है, ये हमें फर्स्ट प्राइज दिलाने वाला गीत है। अगर हमें फर्स्ट प्राइज पानी है तो जरूर इस गीत को हमें याद रखना पड़ेगा। हाँ जरूर, कल्चर प्रोग्राम में भी मैंने जब फर्स्ट प्राइज पाया था कल्चरल प्रोग्राम में, तो ये वही गीत था। नवरात्रि का प्रोग्राम था और वहां पर कंपटीशन था छोटे छोटे बच्चों का। वो जो ट्रस्टी थे वो क्या करते थे, बच्चों को इकट्ठा करके माइक पकड़ाते थे कि बच्चों का क्या हो जाए, डेयरिंग बढ़ जाए, उनके जो कला गुण है वो बाहर निकले। तो मैं जैसे ही वहां पे गया तो माता जी ने कहा, हाँ उधर तो बहुत गीत गाते हो, चलो इधर गा के दिखाओ, देखते हैं कितना है। हाँ, तो फिर माइक ले लिया हाथ में और गा दिया, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था 1 रुपए का। तो वो, हाँ, मतलब छोटा था ना, सबसे बड़ा प्राइज था वो। तो वो 1 रुपया लेकर मैं जैसे ही दौड़ा तो सेंटर में सब बैठे हुए थे, शाम का समय था, 8-9 बजे होंगे, तो टीचर बहन जी थे, मम्मी थे, पड़ोसी भी थे। तो देखो प्राइज मिल गया, मेरे साथ दोस्त भी थे, फ्रेंड भी थे, सब बताने लगे, देखो उसने वहां पे गीत गाया, शिव बाबा का बच्चा हूँ और उसको 1 रुपया मिल गया। तो फिर मैंने वो दीदी के हाथ में दिया, तो दीदी ने कहा ठीक है, 8 आने आप भंडारी में डालना और 8 आने का चॉकलेट ले लेना। अभी कहा कॉइन तो एक ही है, वो तो नॉलेज था ही नहीं कैसे देने, तो 1 रुपया भंडारी में डाल दिया। तो ये जो गीत है ये सदैव याद रहता है। तो आज हमें चर्चा करनी है कि देह अभिमान की मगरूरी। तो इस देह अभिमान की तरफ बढ़ने से पहले और 3 स्टेजेस है उसके पहले की। तो ये देह अभिमान की मगरूरी, इसको छोड़ के हमें क्या करना है, देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए और 3 स्थितियों को हमें जानना जरूरी है। तो पहली स्थिति है देही। देही मतलब आत्मा। देही स्थिति कब होती है, कहाँ होती है, हाँ वो होती है परम धाम में। वो नेचुरल हमारी स्टेज है, स्थिति है। जब हम देह में नहीं होते, परम धाम में होते हैं, उसको कहा जाता है देही। शिव बाबा का भी टाइटल है देही। तो ये जो देही स्थिति है वो हम इस देह में प्रवेश करने के पहले वाली स्थिति होती है। इसको और क्या कह सकते हैं, कर्मातीत भी कह सकते हैं। दूसरी स्थिति है विदेही। अब देही तो देख लिया, विदेही क्या है, हाँ इस स्थिति को हमें प्राप्त करना पड़ता है। कल्प के इस संगम युग पर परमपिता शिव परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा आकर हमें जो नॉलेज देते हैं, उस नॉलेज के आधार पर इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है कुछ समय के लिए। ये जो स्थिति है विदेही स्थिति, ये विदेही स्थिति मतलब इस देह में रहते हुए उस निस्संकल्प अवस्था, निर्संकल्प अवस्था को प्राप्त करना। किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर। ऐसे नहीं कि सो जाएंगे या सुस्त बैठे हैं, कोई विचार ही नहीं आ रहा है और हम विदेही है, कुछ काम धंधा करना ही नहीं है, बस बैठना है सुस्त महादेव बन के, उसको विदेही कहेंगे क्या? नहीं। विदेही मतलब ज्ञान के आधार से आंखें खुली हो और हाँ संबंध संपर्क में भी आ रहे हो, कामकाज भी कर रहे हो, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करना विधेयी अवस्था। तो ये जो विधेयी अवस्था है उसके बाद आती है देह भान वाली अवस्था। तो देह अभिमान कब से शुरू हुआ? देह भान कब से स्टार्ट हुआ? हाँ, जब हम इस धरा पर उतरे और देह में आ गए तो हो गया देह भान। क्योंकि देवी देवताओं को यह पता है क्या मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं विश्व महाराजन हूं, उनको अपना पद पोजीशन पता है ना, उनको पता है कि यह मेरा घर है, अभी मुझे ये कारोबार के बाद यहां पर जाना है, उनको पता है ये मेरा पुष्पक विमान है, ये मेरा बच्चा है, हाँ ये मेरा पड़ोसी है, ये सब नॉलेज है। मतलब क्या है? देह का भान देवी देवताओं में है, सतयुग त्रेता में है। तो देह भान है लेकिन देह अभिमान नहीं है। तो देह भान और देह अभिमान में क्या अंतर है? हाँ देह भान और देह अभिमान में ईगो का अंतर है। ईगो अहंकार, उधर अहंकार नहीं है देवी देवताओं को कि हाँ मैं ही विश्व महाराजन हूं, नहीं। लेकिन मनुष्यों के पास क्या है? अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज हैं, वो हम बाद में देखेंगे कितने प्रकार के देह के अहंकार हैं। अब देवी देवताओं के अंदर देह का भान है लेकिन उनके पास क्या है? उस आत्मा में शक्ति है। इसलिए क्या है? वो शक्ति जो है वो शरीर को चलाती है। उनके पास ये नॉलेज नहीं है कि मैं आत्मा हूं और उस परमपिता शिव परमात्मा की संतान हूं, इस नॉलेज इनके पास नहीं है। लेकिन इस नॉलेज को जब उन्होंने प्राप्त किया था और उस आत्मा में जो शक्ति भर गई थी, कौन सी शक्ति? जो गुण भर गए थे, परमात्म शक्ति भरी हुई थी, दैवी गुण भरे हुए थे, तो वो उस आत्मा के अंदर है, इसलिए वो आत्मा शरीर को चलाती है। इसलिए वो आत्मा के अंदर उनके क्या है? कर्मेंद्रिया चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास आत्मिक शक्ति है, आत्मिक बल है और वो दैवी गुण है जो शिव बाबा ने हम में भरे हुए थे। अब सतयुग और त्रेता जैसे ही खत्म हो गया, बन गए देहाभिमानी। देह अभिमानी माना बन गए भिकारी, बन गए विकारी। जैसे ही देह का भान देह के अभिमान में आ गए तो क्या आ गए? विकार आ गए। और विकार आते ही क्या बन गए? बेकार बन गए। और बेकार बनने के बाद वो उस परमात्मा को ढूंढने लगे कि जिसने हमें क्या बनाया था, जिसने हमें विदेही बनाया था, जिसने हमें क्या बनाया था? देही बनाया था। तो उस परम पिता को ढूंढने लगे और उसकी प्रार्थना करने लगे, पूजा करने लगे। एक मन के अंदर क्या हो गई? इच्छा निर्माण हो गई। कौन सी इच्छा? पहली इच्छा खुद के कल्याण की, कि मेरा कल्याण हो जाए। तो उस कल्याणकारी शिव पिता को ढूंढने लगे, अलग अलग रूपों से उसकी पूजा करने लगे, अलग अलग शिवलिंग बनाए। पहले सोने का, हीरों का बनाया, बाद में पत्थर का बनाया, है ना, पहले अच्छे अच्छे बनाए, फिर बाद में तो जो पत्थर मिले उसी का बना दिया। हाँ हाँ, बर्फ का भी बना दिया। तो ये हो गई चार स्टेजेस हमने देखी, देही, विधेही, देह भान और देह अभिमान। अब देह अभिमान, अभिमान अभी अभी मेरी बात मान, अभी की अभी मान, नहीं तो ओम शांति नहीं तो ओम शांति। तो यही क्या है, सभी झगड़ों का जड़ है, सभी जो समस्या है, विघ्न है, उसका क्या है, बीज है, सभी विकारों की जननी है, सभी विकारों का फाउंडेशन है, सभी विकारों का पिता है देहाभिमान। और इसको लास्ट में रखा है अहंकार के रूप में, कि आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन लास्ट में इसको रखा है। जब हम 7 दिन का कोर्स पूरा करते हैं, उसमें भी लास्ट में दिखाया हुआ है कि कैसे एक एक ऑब्स्टेकल आते हैं और वो पुरुषार्थी आत्मा कैसे उसके ऊपर क्रोध की अग्नि के चक्र से गुजरता है ना, काम के शूल के ऊपर से वो गुजरता है, जंप के देके, हाई जंप लगा के। तो वो सब करते करते लास्ट में दिखाया है, सामने सतयुग का गेट दिखाई दे रहा है और अभी उसमें पांव रखना ही है, लेकिन वो पहाड़ पर चढ़ जाता है, साइड सीन रूपी पहाड़ पे चढ़ जाता है और उस अहंकार में आ जाता है कि देखो मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया। तो वो जो न्यूज़पेपर में आए हुए कटिंग जैसे वो सन्यासी अपने साथ में रखता है, वैसे उस ऊंचाई से दिखता है ना बातें, कि देखो मैंने तो इस पर भी विजय प्राप्त कर लिया, अपने जीवन के अनुभव याद आने लगते हैं, वाह रे मैं चले जाते हैं कि देखो ये लोग तो अभी अभी आए हैं, मैंने तो सालों से इस पर विजय प्राप्त कर रखा है ना, कि मैं तो कितना अच्छा हूं, मैं तो कितना सिंपल हूं, मैं तो कितना भोला हूं, आह कितना अंदर ही अंदर गार्डन गार्डन होने लगता है हाँ मैं तो बचपन से ही भोला हूं बचपन से ही इस बातों पर मैंने विजय प्राप्त करके रखा है। तो कितना ही, हाँ मैं फलाने ईयर में ज्ञान में आया था, तो कितना उसका नशा रहता है ना। और कब पैर फिसल जाए और इतने बड़ी पहाड़ी से जिस स्टेज पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मधुबन है तो इतनी ऊंची पहाड़ी से क्या हो जाते, फिसल के सीधा नीचे आ जाते, तो क्या होता है, हड्डी गुड्डी टूट जाती है पूरी। तो फिर वो जो नजदीक ही पहुंचे थे उस गेट के, लेकिन टांग ही टूटी हुई है तो कैसे पहुंचेंगे वहां तक। तो उस गेट तक बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, नजदीक आए थे, उस सुख की, उस सतयुग की सुगंध आ रही थी, खुशबू आ रही थी, लेकिन जाओ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की खुशबू तो फिर और ही अच्छी होती है। तो देखो नजदीक आकर भी हमें दूर लेके जाने वाला है कौन है, ये देह अभिमान है। तो ये देह अभिमान के कितने अलग अलग रूप है, कैटेगरी है। तो इसमें इस टॉपिक में जो शब्द था मगरूरी, तो मैंने, मुझे ये थोड़ा अजीब लगा शब्द, क्योंकि जो अपनी भाषा होती है, मातृभाषा होती है, वो अच्छी लगती है, अगर दूसरे किसी भाषा का हम शब्द सुनते हैं वो थोड़ा अजीब लगता है। तो मगरूरी शब्द मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मुझे लगा ये हाँ, तो फिर मैंने जब सर्च किया तब पहली ही मिली मुरली, 2 फरवरी 1969 की मुरली, और उसमें बाबा ने देह भान से कैसे मगरूरी आती है वो बाबा ने स्पष्ट किया, और थोड़ी आथत मिली कि हाँ ये अपना शब्द बाबा ने इस पर समझाया हुआ है। तो ये मगरूरी शब्द जब मुरली में मिला तो ठीक लगा कि हाँ बाबा ने एक्सप्लेन किया है। तो अभी हाँ, तो ये जो मुरली है देह अभिमान, तो इसमें बाबा ने कहा कि ये जो मुरली का टाइटल है, इस मुरली का टाइटल है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि, अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। तो यहाँ पर बाबा ने एक लक्ष्य दिया। बाबा ने कहा कि आपका लक्ष्य क्या है अब, तो बच्चों ने बताया कि सर्विस। तो बाबा ने कहा लक्ष्य तो है सर्विस, लेकिन उस लक्ष्य को जब आप बढ़ेंगे सर्विस के फील्ड में उतरेंगे तो क्या हो जाएगा, विघ्न आएगा। कौन सा विघ्न आएगा, बच्चों को बाबा ने पूछा। और बाबा ने खुद ही उसका उत्तर दिया कि देह अभिमान आएगा। और देह अभिमान में जब आप आएंगे तब क्या हो जाएगा, बाबा ने कहा कि सर्विस करते करते देहाभिमान आएगा, ध्यान रखना। कौन सा देहाभिमान आएगा, कि यह मैंने किया, यह मैंने किया। तो ये मैं का जो देह अभिमान है कि यह जो सेवा है मैं ही कर सकता हूं, यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। एक तो क्या आ जाता है, ज्ञान का अभिमान, फिर बुद्धि का अभिमान, ये मेरी इन्वेंशन, ये मेरी आइडिया, ये जो बनाया ना, ये जो मोमबत्ती का स्टैंड है, ये जो स्टैंड है ना, ये मैंने बनाया था, पुराने फोटो दिखाएंगे तो ये क्या है, माया का आने का एक गेट है। तो फिर सर्विस का अभिमान, देखो उस समय जो सर्विस की थी ना, तो उस समय ये लोग निकले थे, फिर मैं कैसे उनको मधुबन लेके गया था। हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर हम अपनी सेवाओं का वर्णन कर रहे हैं या अपना अहंकार वश कर रहे हैं, तो वो बात कैसे हमें नीचे लेके आती। तो बाबा ने इसका निवारण बताया कि कैसे हम इन बातों से बच सकते हैं, कैसे, हाँ, कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, निमित्त बाह होना चाहिए, कि करण करावन हार तो शिव बाबा है, तो मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही क्या होगा, कौन सी स्टेज में हम रह सकेंगे, निराकारी और निरहंकारी और नम्रचित और निसंकल्प। निराकारी, निरहंकारी, नम्रचित और निरसंकल्प, मना फिर वो जो पहली वाली स्थिति हमने देखी थी देही वाले, उस तक हम पहुंच जाएंगे जो उतरते उतरते आए। अभी ये जो देही वाली स्थिति थी, वो स्थिति क्या है, न चढ़ती कला है न गिरती कला है, बिल्कुल क्या है, फ्रीज है हम वहां पे, जैसे फ्रीज में कुछ चीज को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कि ये सड़े नहीं, गले नहीं, उसकी उतरती कला न हो, उसको फ्रीज किया जाता है। तो वो जो हमारी अवस्था है कौन सी वाली है, फ्रीज वाली है, आत्मा जैसे कि फ्रीज में रखी हुई है शोभावन है ना, फ्रीज में रखी हुई है, न सड़ने गलने के कोई चांसेस नहीं, बिल्कुल सेफ है। लेकिन अभी हम देह भान में आए, फिर देह अभिमान में आए, तो क्या हो रहे है, जो स्टेज है वो उतरती है। हाँ, जैसे एप्पल है, रखा हुआ है, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तो उसमें से क्या निकलने लगेगा, सेंट निकलने लगेगा है ना, सेंट है ना, उसमें जो गुण है वो निकल जाते हैं और फिर बदबू आ जाती है उसमें। तो बाबा ने हमें फिर से उस अवस्था में ले जाने का एक चक्र बताया। ये चक्र शुरू कहां से होता है, मैं निमित्त हूं। और फिर बाबा ने कहा कि अगर यह मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा, कौन सी सड़ांद आ जाएंगी इस देह में। तो जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से क्या क्या आता है, जो हमारा टॉपिक है आज का, हाँ, मगरूरी आ जाएगी। और क्या आ जाएगा, जैसे स्टोरी सुनी थी, वो फूल क्या हो गया, मुरझा गया, हाँ मुरझाइश आएगी। और क्या हो जाते हैं आज के मनुष्य, घड़ी घड़ी मायूस हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं, तो उसकी रिजल्ट हम चलते चलते जीते ही मर जाते हैं, चलते चलते ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, माया के दास बन जाते हैं। तो ये चक्र कैसे कुचक्र में परिवर्तित हुआ वो हमने देखा, मगरूरी आई, मुरझाइस हो गई, वो खिलखिलाता फूल, मधुबन की बगिया का फूल है ना, खुशबूदार फूल, कैसे, देखो हम खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई गमला है उसमें फूल खिले हुए हैं, लेकिन वो इंडोर प्लांट है, उसके ऊपर सारा दिन धूप नहीं होती है, कुछ समय सुबह की धूप होती है या वो घर के अंदर ही है गमला, उस गमले को उठा के आप क्या कर दो, छत पे रख दो, तो तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कुछ ही देर के बाद वो कड़ी धूप में थोड़ा सा मुरझा जाएगा, उसके पत्ते, वो फूल क्या हो जाएगा, जो ऊपर होता है तो नीचे, क्यों? क्योंकि उसको उस गर्मी की आदत नहीं है। हाँ, जो है ही धूप में पौधा, उसके अंदर वो रेजिस्टेंस पावर है धूप को सहन करने की, लेकिन जो है ही सदा कमरे के अंदर छांव में रखा हुआ, हाँ। नहीं, अगर पानी आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, गीला होके तो ये जो फर्क है हमें प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। तो जब तक हम इस बाउंड्री के अंदर है, जब तक हम अपने प्रशंसों को बीच में है, तब तक हमारी स्थिति अच्छी है, खुशबू दे रहे। जैसे ही थोड़ा दुनिया के वातावरण में गए या थोड़ा कोई है, हाँ, तो वो लोग हमारे आसपास आ जाए, निंदा करने वाले, अपमान करने वाले, तो हम देहाभिमान में आकर मुरझा तो नहीं जाते हैं। तो इससे बचने के लिए बाबा ने कौन सा निवारण बताया कि मैं निमित्त हूं। अभी अभी दादी जी डे हुआ, तो दादी जी के भी क्या महावाक्य थे, निमित्त निर्माण निर्मलवाणी। तो इसलिए मुख्य शिक्षा जो बाप दादा ने दी हुई है, इसको याद रखना है कि मैं निमित्त हूं। इससे कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, नहीं तो मैंपन आ गया तो कौन से चक्र में आ जाएंगे, मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। और ये मतभेद का चक्र ऐसे है जो हमारे संगठन के किले को क्या कर देता है, कच्चा बना देता है। हमारे जो विशेषता है, एक फूल है और फूलों का गुलदस्ता है, ये फूलों का गुलदस्ता बाबा के सामने रखा हुआ है, तो एक खराब हुआ तो सब खराब होने लग पड़ेंगे, मतभेद में अगर आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, आर्ग्यू करना, नहीं मैं ही सही हूं, मैं ही राइट हूं, तो क्या हो जाएगा, अपमान की फीलिंग आएंगी। अपमान की फीलिंग का उदाहरण कहाँ है, महाभारत में हम देखते हैं, द्रौपदी का दिखाया जाता है, तो कैसे वो दुर्योधन अपमानित हुआ, और फिर कैसे उसमें देह अभिमान था ही ना भरा हुआ, कौन कितने प्रकार के अभिमान थे उसके पास, वो सब जागरूक हो गए एक अपमान से। देह का अभिमान था इसलिए अपमान हुआ, इसलिए वो उसको क्षमा नहीं कर पाया, और अभिमान देह का था, अपने बल का था, अपनी सत्ता का था, है ना, तो उस देह के अभिमान के कारण उसने क्या कहा, क्या चाहिए था पांडवों को, इंद्रप्रस्थ चाहिए था, है ना, दे दो इंद्रप्रस्थ, क्या है तुम्हारे पास, तो पूरी राजधानी पड़ी है, नहीं मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, पांच गांव दे दो पांडवों को, नहीं मैं नहीं दूंगा, सुई की नोक की बराबर की जमीन भी नहीं दूंगा, जाओ आप वन में चले जाओ, वनवासी बन जाओ। तो फिर पांडवों को भी युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया, और क्या कर लिया, खुद का भी विनाश कर लिया, खुद के साथ साथ अपने भाइयों का और अपने माता पिताओं को भी आहत कर दिया, अपने जो भी सगे संबंधी है। तो ये देह अभिमान में क्या भरा पड़ा हुआ है, महाविनाश, महाभारत भरा पड़ा हुआ। तो आज का स्लोगन भी क्या है, अब बताओ, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर होती है। तो एक कसौटी है किसी भी चीज को परखने की, एक कसौटी होती है, तो देह अभिमान है उसकी कसौटी क्या होती है कि अब उसको अपमान की फीलिंग आती है। तो जरूरी नहीं है कि ये कसौटी करने के लिए आपको टीचर बनना है, जज बनना है, या सोनार बनना है कि चलो देखो इसको अपमान आता है क्या नहीं, ये बाबा ने हमें अथॉरिटी नहीं दी हुई। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, ज्ञान को उल्टा उठा लेते, चलो देखते इसको फीलिंग आती है क्या, कुछ ना कुछ जानबूझ के उसको ऐसे शब्द कटु वचन बोल देंगे चार लोगों के बीच में, तो फिर उसको जो है पारा ऊपर चला जाएगा क्रोध का। तो ये जो देह अभिमान है इसका मुख्य कौन से विकारों से संबंध में है, ये कौन से विकारों की कुल से आता है? अहंकार। और इसके सगे संबंधी कौन है? क्रोध, ईर्ष्या। हाँ, जड़ नहीं बोल। तो ये तो सब आपस में जुड़े हुए ही है, लेकिन मुख्यतः अहंकार के अंडर ये देह अभिमान आता है। तो ये देह अभिमान जो है कब से है हमारा साथ ही, कितने जन्मों से? आज की मुरली में भी बाबा ने बताया कितने जन्मों से है देह अभिमान हमारे साथ, 63 जन्मों से। कौन सा युग था वो जब वो हमारे अंदर आ गया? हाँ, द्वापर। द्वापर में वो हमारे अंदर घुस गया था। 63 जन्म हो गए, साल कितने हो गए? 2500 वर्ष हो गए। तो देखो इतने समय से वो हमारे साथ में है, तो वो क्या करता है? साथ निभाने के लिए हर घड़ी तैयार है। लेकिन बाबा ने कहा है इसके ऊपर हमें कैसे विजय प्राप्त करनी है, तो उसके लिए बाबा ने हमें कुछ गुण दिए हैं, कुछ शक्तियां दी हुई है। नम्रता का गुण दिया, समाने का दिया, सहनशीलता भी दी, और हाँ सुशीलता दी। तो हमें ऐसा देह अभिमान से मुक्त बनना है तो हमें उस उदाहरण को देखना होगा कि जो हमारे आजू बाजू में है, कि जिनका क्या होता है, गायन और पूजन हो रहा है। तो ऐसे जो उदाहरण है उस उदाहरणों के हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा कि सचमुच आपने कैसे इसको जीत लिया, कैसे आपका उसने इतना अपमान कर दिया। जैसे सन्यासियों का भी उदाहरण है, जो सन्यासी अभी अभी नदी के उस पवित्र जल से स्नान करके बाहर निकले हैं, और एक दुराचारी क्या करता है, झाड़ के ऊपर बैठकर उसके ऊपर थूक देता है। एक बार थूका, दूसरी बार थूका, तो वो क्या कर रहे हैं, बार बार जाकर स्नान कर रहे। तो बाद में वो थक गया थूकते थूकते, और फिर उसने आके क्षमा मांग ली कि मुझे क्षमा कर दो और मुझे ये बताओ कि आपने इस बात को कैसे सहन किया। तो उन्होंने कहा देखो आपके इस कार्य के कारण मुझे भाग्य मिल रहा था बार बार इसमें डुबकी लगाने का। उन्होंने तो उस पावन पतित पावनी उस नदी को समझा। हाँ, और था भी गर्मी का मौसम तो उनको भी अच्छा लग रहा था। तो देखो बाहर तो विकारों की गर्मी है, हम तो एसी में बैठे हुए हैं, भले हमें वो पता नहीं है बाहर की गर्मी, और कोई हमारे ऊपर ऐसे कृत्य कर देता है तो एसी में बैठे हुए तो नहाने का मन तो नहीं करेगा ना। तो हमें इस नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि बाहर गर्मी है, भले हम शीतल छैया में परमात्म क्या बैठे है, इस किले के अंदर बैठे हुए है, हमें वो बाहर की गर्मी पता नहीं है, लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि बाहर लोग कैसे तड़प रहे हैं, कैसे दुखी है, कैसे एक समय के भोजन के लिए भी उनको मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमें उस बात का नॉलेज, समझ और क्या, एक ज्ञान, रोशनी होनी बहुत जरूरी है कि बाहर कितनी मेहनत है, और बाबा ने हमें सेफ रखा है। हम तो छोटी सी बात में क्या हो जाते, फा हो जाते, तवाई हो जाते कि अरे मुझे इस नजर से देखा, मुझे ऐसा शब्द बोला, तो ये देह अभिमान का रूप जागरूक हो जाता है। और जो बाबा की गोदी में हम बैठे हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, उतरने के लिए क्या हो जाते हैं, हम ही अपने आप को उतर जाते। तो इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते क्या हो जाता है, ये जो 63 जन्मों के देह अभिमान के जो संस्कार है वो फिर क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग में और क्या हो जाता है, सूक्ष्म रूप में कौन सा देह अभिमान आता है, कि एक तो विशेषता का कि हाँ ये विशेषता मेरे अंदर है, मैं कोई कम हूं क्या। अभी सतयुग को देखेंगे है ना, दुनिया में तो होता ही है अपनी विशेषता का अभिमान, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ज्ञान मार्ग में भी हमें आ रहा है। तो अगर हम अपने उस संपूर्ण रूप को देखेंगे जो देवी देवता है, वहां विश्व महाराजन को लगेगा क्या कि हाँ मैं ही विश्व महाराजन हूं। हाँ है ना, है ही आप विश्व महाराजन। तो वो किसी और के सामने, किसी और को नीचा दिखाने के लिए कभी नहीं कहेंगे कि मैं ही विश्व महाराजन हूं, कहने की दरकार ही नहीं है, या मैं यहां सबसे बड़ा हूं। हाँ ज्ञान ही नहीं है उनके पास। तो फिर और कौन सा अभिमान आ जाता है कि मेरा भाषण सबको पसंद आता है, कि मेरी सेवा का बहुत प्रभाव पड़ता है, लोग मेरी बहुत महिमा करते हैं और कोर्स करने के लिए भी आते हैं। जब भी मैं प्रदर्शनी में जाता हूं तो वहां से लोग कोर्स करने के लिए आते हैं। तो ये भी क्या है, ज्ञान मार्ग में चलते चलते एक देहाभिमान आ जाता है। फिर कोई कला, कोई विशेष कला होती है हमारे अंदर कि मेरे पास है ना हैंडलिंग करने की कला बहुत अच्छी है, या कोर्स करने की कला बहुत अच्छी है। हाँ तो ये क्या होता है, अभिमान हमें कंपटीशन में ला देता है। अपने आजू बाजू में कोई है अपने सेवा साथी, तो उनके साथ क्या हो जाता है, फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। तो देह अभिमान का और एक रूप बाबा ने बताया था, 71 की मुरली है 19 अगस्त की, तो उसमें बाबा ने बताया कि श्रीमत में मन मत मिक्स कर देना, श्रीमत में अपना ज्ञान अपनी बुद्धि मिक्स कर देना और अपने आप को ही समझदार समझ लेना कि मैं ही समझदार हूं। तो इसको कहेंगे, बाबा ने कहा कि बुद्धि का अभिमान। फिर इसमें बच्चों से चिट चैट की तो बच्चों ने उत्तर दिया कि लोक लाज, तो बाबा ने कहा यह तो बहुत छोटा रूप है लोक लाज, लेकिन वो तो है ही कि ज्ञान मार्ग में हम चल तो रहे हैं, लेकिन लोक लाज सफेद कपड़े पहन के जाना या बैच लगाना, कल भी बाबा ने कहा था ना बैच लगा कर रखना, तो क्या होते है कहीं ना कहीं देह अभिमान के वश शर्म आ जाती कि कैसे कैसे लगा। तो ये भी क्या है, लोक लाज। फिर निंदा स्तुति हार जीत महिमा वग्लानी, ये जब होता है तब इसमें हम समान नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि अंदर में क्या हुआ है, देह अभिमान भरा हुआ है। तो इस देह अभिमान के ऊपर मुझे क्या करना है, विजय प्राप्त करनी है। तो कौन कौन सी विधि, कौन कौन से उपाय बाबा ने बताए हुए हैं, एक तो मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, स्वमान में रहता हूं, नम्रचित्त हूं और निमित्त हूं, हाँ निरसंकल्प हूं, निराकारी हूं, निरहंकारी हूं, हाँ भोलेनाथ शिव बाबा का भोला बच्चा हूं, स्वमान के रूप में लेना है इस बात को, न कि दूसरों को सुनाने के लिए। अच्छा, ओम शांति।
Shoot. होती भी।